मेरी तरफ से भी एक बहुत अच्छा अपराह्न दोस्तों, यहाँ फिर से मिलकर अच्छा लग रहा है। हम इस बार उस सवाल से निपटेंगे जो मेरे पीछे प्रयोजित है, क्या पाप भगवान की योजना थी और मैंने उस शब्द पाप को कठिनाइयों में क्यों रखा है। ये उससे संबंधित है कि उस अवधारणा के तहत विभिन्न चीजें समझी जा सकती हैं, यह स्वभाव से स्पष्ट होगा। हम पहले कुछ बिंदुओं को ठीक करें। कहें तो देखो, जब हम बुराई की उत्पत्ति की बात करते हैं, और कभी कभी मैं उन शब्दों का उपयोग एक दूसरे के सिनोनाइम के रूप में करता हूं, लेकिन मनुष्य के सभी गलतियों की बात है, उसके पीछे क्या है, वह कहां से आया है, क्योंकि यह वास्तव में एक ऐसा प्रश्न है जिस पर मनुष्य ने कभी ना कभी सवाल किया है। वास्तव में एक पुस्तक जॉब कुछ इस पर ही है, यहां से आया है और हमें यह कैसे समझना चाहिए, और यह एक महत्वपूर्ण रहस्यों में से एक है, क्योंकि इसे ऐसा ही दृष्टिकोण से देखा जाता है, न केवल दर्शन शास्त्र में ही बल्कि शायद धार्मिकता में भी। बस वह सब कुछ जो हमें इस अस्तित्व और इसके कारण के बारे में सवाल करते हैं, और यह वाहक की भूमि है जहां दर्शन और धर्म दोनों ही व्यस्त है ना। हां, तो आप इस सवाल पर आते हैं, यह ईसाई धर्म में भी सवाल को रहस्यमय बना दिया जाता है क्योंकि इसका विचार है, इसे बेहद जानबूझकर स्पष्ट रखा जाता है और इसके बारे में पूछे जाने वाले प्रश्नों को नकारात्मक बनाया जाता है। और जब मैं ऐसा कहता हूं तो मैं व्यक्तिगत अनुभव से भी बोल रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं एक युवा लड़के के रूप में इस्ती जी चर्च में इस तरह के प्रश्नों के साथ आया था, और मेरी याद केवल उसी की ओर जाती है कि हमेशा जब प्रधानाचार्य वहां उत्तर देते थे तो वास्तव में संदेश यही था कि अगर आप उस सवाल को प्रस्तुत करते हैं कि ठीक है, हमें उस सवाल के साथ काम करने में बहुत ही सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह वास्तव में सवाल करने के लिए भी कुछ दुगना है, क्योंकि इसका सवाल करना वास्तव में शायद कुछ श्रेष्ठ है, ताकि आप इसके साथ कुछ ऐसा विचार करें जो हमें इसे ढूंढने के लिए मार्गदर्शन कर सके। लेकिन इसको रहस्यमय बनाया जाता है क्योंकि यहां तक कि वहां कोई उत्तर नहीं है या उस पर कोई उत्तर नहीं है। शीर्षक में जैसा प्रश्न किया गया था, क्या पाप भगवान की योजना थी, यह वास्तव में एक चक्करदार प्रश्न के रूप में प्रस्तुत होता है, और आप जानते हैं कि एक चक्करदार प्रश्न क्या है। एक चक्करदार प्रश्न वह एक प्रश्न है जिसे आप वास्तविक रूप से जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि आप ना हो जाएं तो हां हो जाएं, चाहे आप हां या ना कहें, क्योंकि वास्तव में यह एक बंद प्रश्न है, क्या यह भगवान की योजना थी, आपका जवाब हां या ना है, लेकिन दोनों ही स्थितियों में उत्तर हां या ना है। अच्छा नहीं, वह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। जांचें तो, क्या पाप भगवान की योजना थी, इसलिए जो हुआ है और जो दुनिया में है उसमें क्या गलत है, और जो मानव एक दूसरे को कर रहे हैं उसमें क्या है। परंतु यह एक सत्य है कि भगवान ने उसे सभी कुछ भी अनुमति दी है, वह तो हो ही रहा है। अगर वह भगवान की योजना नहीं है तो दो विकल्प हैं, तो उसने या तो यह नहीं देखा था, तो यह एक अपूर्व है, या उसके पास इस पर कोई नियंत्रण नहीं था इसलिए उसने इसे देखा था, लेकिन उसके पास इस पर नियंत्रण नहीं था। लेकिन आप समझते हैं कि दोनों ही स्थितियों में जवाब एक अपमान और भगवान की अवमानना है, क्योंकि हां, पहले मामले में वह सच्चाई से बढ़ता है कि अगर उसने नहीं देखा है तो वह सर्वज्ञ नहीं है, और दूसरे मामले में वह सर्वशक्तिमान नहीं है, क्योंकि उसने इस पर नियंत्रण नहीं रखा था। आप समझते हैं, इसलिए अगर आप सवाल को नकारात्मक रूप से जवाब देते हैं, क्या पाप भगवान की योजना थी, नहीं, तो वह उसकी सर्वज्ञता का हमला है या उसकी सर्वशक्ति का हमला है, और इसलिए जवाब होना चाहिए हां, क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो वास्तव में भगवान अब और भी भगवान नहीं है, न तो सर्वज्ञ और न ही सर्वशक्तिमान। और क्या पाप भगवान की योजना में था, तो वह नौ लेते हैं, मैं इसे दूसरे तरीके से कहूं, विशेष रूप से सुधारवादी दुनिया के भीतर जहां भगवान की सर्वराज्यता पर महत्वपूर्ण बल डाला जाता है, यानी भगवान सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान हैं और एक मजबूत हाथ जो कभी भी चूकता नहीं है, वहां इस प्रश्न को अधिक अद्यतिथि बनाए रखा जाता है, जिसे मानव स्वतंत्र इच्छा के बारे में बहुत ऊंचा माना जाता है। लेकिन देखो, यदि पाप भगवान की योजना में है तो लोग कहते हैं हाँ ये वह नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो आप भगवान को पाप के लेखक बना देते हैं। और जो उनमें मत्स्य करना है वह यह है कि भगवान ने इसे पहले ही अपने लेख में इस प्रकार लिख दिया था, ऐसा होना था। और लोग कहते हैं कि यदि ऐसा है तो उसे अपमानजनक माना जाता है, क्योंकि फिर उसे वास्तव में एक पापी माना जाता है, तब वह स्वयं पाप के निर्माण के लिए खड़ा है और इसलिए वह एक पापी है और ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए लोग तब कहते हैं कि हाँ जवाब नहीं हो सकता, ना हाँ और ना ही हाँ है। और इसलिए तुम्हें यह सवाल पूछना चाहिए ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इसका कोई उत्तर नहीं है, यहां यह सच है। लेकिन मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि जो नतीजा निकाला जाता है वह सही नहीं है। हम यहां बाइबल अध्ययन के साथ व्यस्त हैं, यानी हम शास्त्रों को खोलते हैं, हम सवाल करते हैं। सिद्धांत में कोई भी प्रश्न सिद्ध है, ये सचमुच बहुत अच्छे प्रश्न हैं। वे इतने सार्थक हैं, ये वास्तव में वे प्रश्न हैं जिन्हें एक व्यक्ति को देखना पड़ता है। ये कैसे हो सकता है, और खासकर ईश्वर के साथ संबंधित कैसे? ये कैसे है कि हम बाइबल में ईश्वर को सीखते हैं? ये कैसे है कि वह वास्तव में वही है जो ईश्वर है? इस पर उत्तर पाने के लिए हमें परमेश्वर के वचन, जिसे हम बाइबल कहते हैं, के पास जाना चाहिए। लेकिन ठीक है, तो फिर वहां विभिन्न प्रश्न आते हैं, जैसे क्या परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही जाना था? लेकिन क्या यह वास्तव में एक सच्चा प्रश्न है? क्या परमेश्वर ने सब कुछ पहले ही जाना था? सचमुच यह प्रश्न पूरी तरह से गैर श्रद्धानापूर्ण है अगर आप इसे वास्तविक प्रश्न के रूप में लेते हैं। क्या परमेश्वर ने पहले से जाना, क्षमा करें, क्या परमेश्वर ने सृष्टि रचना करते समय एक जोखिम लिया था? इस प्रश्न से मुझे बहुत बार मिला है। जब परमेश्वर ने सृष्टि रचना की तो क्या उसने एक जोखिम लिया था जिससे आप सकारात्मक रूप से, इसका अर्थ है कि उसे यह नहीं पता था कि भविष्य में कैसा होगा? कुछ इसलिए, एक जोखिम है जब आप नहीं जानते हैं कि यह कैसा होगा, इसका अर्थ है कि आप अज्ञान हैं। अगर मैं शेयर बाजार में जाऊं और मुझे प्रत्येक शेयर के लिए कोर्स कैसे होगा यह पता हो तो मैं जोखिम में नहीं हूं अगर मैं निवेश करूं या बेचूं, क्योंकि मुझे तो यह पता है कि यह कैसे होगा। क्या पाप फिर परमेश्वर को आश्चर्यचकित कर दिया? आप समझ रहे हैं, ये सभी प्रश्न एक दूसरे से कुछ स्पष्ट रूप से मिलते जुलते हैं। क्या परमेश्वर को जब पाप आया तो उसे योजना भी पर स्विच करना पड़ा? नहीं तो क्या पाप का तात्पर्य है? और इसके साथ सीधे सवाल जुड़ता है, एक अच्छे परमेश्वर कैसे बुराई का उपयोग कर सकता है? अगर परमेश्वर अच्छा है तो ऐसा क्यों बुराई हो सकता है? यह है वह प्रश्न जिसके साथ हम शुरू हुए थे और जिस पर पुस्तक योब है। कैसे हो सकता है, यह वह प्रश्न है जो दुनिया में हमेशा पूछा जाता है, विशेषकर जब बुराई, दुख, मुश्किल, बीमारी, आपदाएं आपके मार्ग में आती है। लेकिन अगर परमेश्वर अच्छा है तो उसने ये कैसे होने दिया? और यदि आप कहते हैं कि हाँ लेकिन उसने बस यही कहा है, जब उसका रूपांतरण करने की क्षमता है और वह नहीं करता है, तो मानवीय दृष्टि से उसकी सहायक है ना, परमेश्वर सहायक है क्या? परमेश्वर क्योंकि इस पर ही आता है, सब कुछ के साथ एक योजना है, क्या सबका कोई उद्देश्य है, और इत्यादि। नौ, मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास आज आपके लिए 9 आध्यात्मिक शस्त्रों हैं। और 9 क्यों? क्योंकि इसमें पूरे 35 हो सकते थे, लेकिन ठीक है, मैं इस बात को स्थापित करने के लिए एक प्रबल प्रमाण प्रदान करना चाहता हूं कि परमेश्वर के पास वास्तव में सब कुछ के साथ एक योजना है, एक उद्देश्य है, जिसमें बुराई और पाप शामिल है। चलो हम ऐसे ही उन आध्यात्मिक शस्त्रों को समीक्षा करते हैं। पहला नंबर यशायाह 46, और मैं फिर कहता हूं सूची बहुत लंबी हो सकती थी, लेकिन इन्हें अगर आप मुझसे पूछें बहुत स्पष्ट हैं, और इस पर निर्भर करता है कि ये चीजें सच हैं या नहीं। मैं बता रहा हूं वह जो मैंने शास्त्रों में खोजा है, और वह मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं, और यह आप पर है बिल्कुल वैसा ही जैसा कि मेरे साथ कभी हुआ, यह जांचने के लिए क्या सही है, क्या यह सत्य है, क्या इसे शास्त्रों के साथ मेल खाता है, यह आपका काम है। ठीक है, यशायाह 44 एक शानदार अध्याय, विशेषकर इसलिए कि यशायाह के इस पुस्तक में वह ध्वनि है जो वाकई महान है, जो वाकई वह है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है और जिसने अपने खोखले हाथ में पानी को मापा है, वह बहुत अच्छा अध्याय है। वैसे ही एक और अध्याय है जो यशायाह में है और जो सभी तारे को नाम से पुकारता है, आदि वह ईश्वर। और यहां है मैं, ये वाकई ईश्वर है जो यहां यशायाह के माध्यम से वाक्यांतर कर रहा है। मैं जो शुरुआत से ही अंत की बात कहता हूं और पुराना जो अभी तक नहीं हुआ है, वह कहता है मेरी सोच बनी रहेगी और मैं वह सब करता हूं जो मैं इच्छित करता हूं। पाठ आगे बढ़ता है लेकिन मैं यहां रुकता हूं क्योंकि यह एक छंद मुझे लगता है कि बिना किसी विशेष शब्दों के ही बहुत सा स्पष्टीकरण कर देता है। यह हमें उस ईश्वर के साथ मुकाबला करता है जो वाकई कभी भी आश्चर्यचकित नहीं होता है, जो कि सचमुच शुरुआत से ही, आप ये भी कह सकते हैं कि यह पैदा होने के बाद की बात, हिब्रू में जो कि बेरेशित कहलाता है और जो कि शुरुआत से ही बस उसने पूरी भविष्यवाणी की। तो उसने शुरुआत में यह जानते हुए कि आखिरकार कैसा होगा। तो हम यहां बात नहीं कर रहे हैं केवल एक ईश्वर के बारे में जो सर्वज्ञ है, बल्कि जो आम तौर पर सब कुछ को नियंत्रित करता है, जो कुछ शुरुआत करता है लेकिन यह भी जानता है कि वह जिसके साथ शुरुआत कर रहा है और भी उसे पता है कि वह जो भी शुरुआत कर रहा है वह आखिरकार कैसे समाप्त होगा। मैं जो शुरुआत से ही अंत की बात कहता हूं और पुराना जो अभी तक नहीं हुआ है, ईश्वर वह है जो पूर्वानुमान करता है। वैसे ही उत्तराधिकारी वास्तव में भी है। वास्तव में बेरेशित एक पूरी ब्लूप्रिंट है सभी उद्धारण के दिनों के लिए। यह एक अलग विषय है लेकिन मैं इससे यह भी कहना चाहता हूं कि वास्तव में बेरेशित एक पूर्वानुमान है प्रकार में, ठीक है, लेकिन तथापि एक बारीकरण है नए सृष्टि की ओर जाने के लिए जिस पथ को ईश्वर जाएगा। इस सृष्टि का समापन जो आखिरकार एक शानदार शब्बत में समाप्त होता है, सातवें दिन में विशेष है जरूर। और वह कहता है मेरी सोच बनी रहेगी और मैं वह सब करता हूं जो मैं चाहता हूं और मैं चाहता हूं। उस शब्द का मतलब है कि उसका उद्देश्य इरादा से संबंधित है, जो कहता है मेरी सोच बनी रहेगी और मैं वह सब करता हूं जो मैं इच्छित करता हूं। वास्तव में उसको उसके लिए कुछ भी नहीं रोक सकता है, उसके पास सब कुछ है, वह सब कुछ सोचा है, वह सब कुछ बनाया है। तो उसे कभी भी रोका जा सकता है क्या कि वह उसकी दृष्टि में है, वाला मुझे यह बहुत अच्छा लगता है, यह भगवान है, यह वही है जो वह खुद घोषित करता है, यह छोटे देवता नहीं है, नहीं, यह वह भगवान है, एक सब कुछ का स्थानीय सर्वशक्तिमान सर्वज, उसे कभी चौंका नहीं लगता। एक आश्चर्य कुछ के लिए होता है, एक रचना के लिए, एक प्राणी के लिए जो वास्तव में नहीं जानता कि क्या होने वाला है, और तब आप चौंका सकते हैं। लेकिन भगवान कभी चौंकते नहीं है, वह वास्तव में सर्वशक्तिमान है। यशाया 36 श्लोक 10 में इसका उदाहरण दिया गया है। हम एक ही अध्याय को खोलकर यशाया 48, वहां भगवान फिर से जेशाया के माध्यम से खुद को व्यक्त करते हैं, क्योंकि भगवान पहले व्यक्ति एक वचन में वहां बोलते हैं। और श्लोक 6 में एक वाक्य के बीच में यह है, ताकि लोग जाने कि सूरज कहां से उगता है पूरब में और कहां अस्त होता है पश्चिम में, कि मेरे बाहर कोई नहीं है, मैं जहवे हूं और कोई नहीं। और फिर उन्होंने स्पष्ट किया कि वह कौन है, कि वह जहवे एक हूं, वह प्रकाश का निर्माता है और अंधकार का सृष्टिकर्ता है। ये शब्द संपूर्णतः समान नहीं है, मैं निर्माता और सृष्टिकर्ता कहना चाहता हूं। वह शून्य से रचता है और रचना मौजूद सामग्री के साथ करता है, लेकिन इस न्यूएंस को मैं अब थोड़ी देर के लिए अच्छा करता हूं। प्रकाश कहां से आता है, नहीं, वह इसे निर्मित करता है। अंधकार कहां से आता है, यह प्रकाश की अभावना है। अंधकार स्वयं में कुछ नहीं है, प्रकाश कुछ है, जहां प्रकाश की अभावना है वहां अंधकार है, तो अंधकार प्रकाश की अभावना है। आप यह भी कह सकते हैं कि इसके बारे में दुर्भाग्य भी कुछ नहीं है, ये वहां है जहां अच्छा अभाव है। इसमें कई ऐसे शब्द हैं, को भी कुछ नहीं है, गर्मी है, गर्मी ऊर्जा है, ठंडक ऊर्जा की कमी है, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। यशायाह 45 का लेख, प्रकाश का निर्माता और अंधकार का सृष्टिकर्ता, जो शांति बनाता है और बुराई उत्पन्न करता है, वह प्रकाश को निर्मित करता है, वह अंधकार का सृष्टि करता है, वह शांति करता है और वह बुराई उत्पन्न करता है। वह शब्द बुराई हिब्रू भाषा में रा या कुछ लोग रो कहते हैं, और वह क्रिया से उत्पन्न होता है और यह कुचलना या मसलना तोड़ना का अर्थ है। इसलिए इससे बुराई के साथ यह संबंध है। यहां एक और रुचिकर है पाप शब्द। पाप का शाब्दिक अर्थ है लक्ष्य छूटना। हेब्रू और ग्रीक दोनों में ऐसा ही है। मैं सुधारकों की पुस्तक का संदर्भ दे रहा हूं। आप किसी विशिष्ट लक्ष्य के साथ एक पत्थर फेंकते हैं और यदि आप लक्ष्य में पहुंचते हैं तो आपने उस लक्ष्य को प्राप्त किया है, और अगर आप इसे नहीं मारते हैं तो आप लक्ष्य को छूते हैं। धार्मिक शब्दों में आप इसे पाप कह सकते हैं। वास्तव में यह शाब्दिक अर्थ में एक नैतिक अवधारणा नहीं है। इसका अर्थ है आप लक्ष्य को नहीं मिला, यही पाप है। बुराई भी स्वयं में एक नैतिक अवधारणा नहीं है। आप कुछ को तोड़ देते हैं। कभी कुछ बनाने का समय होता है, कभी कुछ को तोड़ने का समय होता है। हम मनुष्य भी ऐसा करते हैं, और फिर आप उसे कूड़ाघाट पर ले जाते हैं या कुछ तोड़ देते हैं। कुछ लोग इसमें बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन आप फिर भी कुछ को तोड़ते हैं, उदाहरण के लिए अपने घर के एक कमर को फिर से बनाने के लिए। बुराई में कुचलने का संबंध है आग और गंधक द्वारा सोडम और गमोरा के नाश का विनाश। हां, वह बुराई है। क्या शहर में कोई बुराई होगी जिसे यहोवा नहीं करेगा? यहोवा के पुस्तक आमोस 3 में है। आप बहुत बार पढ़ते हैं कि भगवान बुराई करता है जब उसने उसके न्याय भेजे होते हैं या उसने अपने निर्णयों को भेजे होते हैं और संकट में डालते हैं। संकट मतलब बस न्याय है। लेकिन ठीक है, यह है रा शब्द जिसे कुचलने और तोड़ने से साथ कहा गया है कि बुराई भी भगवान की रचना है। वास्तव में आप यहां भी कहेंगे बिल्कुल, क्या कुछ ऐसा है जो अपना आप को बना सकता है? बिल्कुल भी, यह भगवान की रचना है। और यह भी एक बहुत रोचक तथ्य है, बुराई हमेशा अच्छे के साथ विरोध है। और यह भी पहली बार जब बुराई शब्द का उपयोग बाइबल में हुआ है, वह जेनेसिस 2 में है। तब तुम पढ़ते हो कि भगवान ने एक बगीचे में एक पेड़ रखा, ज्ञान का पेड़ और बुराई का ज्ञान। यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि यह सिर्फ बुराई के ज्ञान का पेड़ नहीं है बल्कि अच्छे के ज्ञान का भी पेड़ है। अच्छे के ज्ञान को बिना बुराई के ज्ञान के बिना नहीं मिला जा सकता है। जब आप अच्छे का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो आप स्वतंत्र रूप से बुराई का भी ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप एक से अधिक के विरोध में इसे जानते हैं, जैसा कि हम सभी दैहिक उदाहरणों में जानते हैं। आप अच्छी चीजों को वास्तविक रूप से मूल्यांकित जानते हैं, सचमुच समझते हैं। सीधे विरोध में हम यहोवा के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं। आप धन्यवाद देने के लिए कभी भी मुगली जाती, आप उससे अच्छी चीजें हो सकती हैं लेकिन आप वास्तविक रूप से नहीं जानते, क्योंकि वह आपका अच्छा नहीं है। तब तक जब आप जानते नहीं हैं वहां अच्छी चीजों के साथ विरोध में रूप। और यह बहुत सी बातें के लिए लागू है। भगवान हमेशा विरोध बनाता है। जेनेसिस 1 का पूरा विरोध से भरा हुआ है। आसमान और पृथ्वी का, प्रकाश और अंधकार का, दिन और रात का, आदि आदि, और अच्छा और बुरा भी। भगवान सृष्टि करता है, यहां इससे मतलब है। सवाल यह है बुराई कहां से आई? तब आप कह सकते हैं फिर हम दार्शनिक या पुस्तकों, धार्मिक पुस्तकों में जाएंगे। और नहीं, तब मैं कहूंगा महान भगवान के पास कान लगाओ, और जो कहते हैं मैं हूं जो प्रकाश को रूपित करता है और अंधकार को रचता है और शांति बनाता हूं और बुराई बनाता हूं, मैं जावे इन सभी बातों को करता हूं। गलत फहमी न करें, मैं हूं, मैं इस सब का मूल हूं। हां, यह इतना महाकाव्यात्मक है। यह सवाल का एक शानदार उत्तर है, बुराई कहां से आई? हां, 9, मैं कहूंगा इसे याद रखो, यशायाह 35 श्लोक 7। यह एक दुर्घटना नहीं है, बुराई अनूठी नहीं है। भगवान सृष्टि करता है, और इसलिए, और यह मुझे महान लगता है, बुराई अच्छे हाथों में है, वह मुझे महान लगता है, सबसे बढ़िया। और आप मानते हैं अगर वह बुराई का समर्थन करते हैं तो वह इसे दिल से नहीं करते हैं। लोगों के बच्चों की पीढ़ी अयातित करते हैं कि कोई नहीं करता है, उन्होंने ये तो करता है, लेकिन यह इसलिए है क्योंकि यह आवश्यक बुराई है। बहुत सी चीजें हैं जो आप खुद में नहीं चाहते हैं लेकिन जो आवश्यक हैं, जिनके उद्देश्य के लिए आपको हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो भगवान खुद में नहीं चाहता है लेकिन जो आवश्यक हैं। बस मैं कहूंगा हर बुराई भगवान के लिए आवश्यक बुराई है, क्योंकि यदि यह आवश्यक नहीं था तो एक अच्छे भगवान ने इसे कोई स्थान नहीं दिया होता, वहां वह खुदा के लिए है। हम आगे बढ़ते हैं, मिस्त्री 16 श्लोक 4, वहां यह है। हाँ, इसमें वह सब कुछ है एक स्वाभाविकता के साथ, लेकिन एक इतनी शक्तिशाली, लगभग मजबूत, लगभग बाध्यकारी तरीके से जिसमें यह प्रस्तुत किया जाता है कि यहोवा प्रभु अपने उद्देश्य के लिए सब कुछ बनाता है, अपने उद्देश्य के लिए सब कुछ। और अब आप कह सकते हैं हाँ सब, लेकिन वहां अच्छी चीजें भी हैं और वह भगवान की नहीं है, वहां एक दिन है बुराई का, तब वह कभी भी ऐसा नहीं कह सकता है। हाँ, कहानी लेखक, मेरा ख्याल है कि सुलेमान ने इसे निकटस्थ तरीके से लेखा और सभी मानव तर्कों के लिए रास्ता काटना चाहा और उसने इसे अत्यंत बनाने के लिए किया। उन्होंने कहा यहोवा अपने उद्देश्य के लिए सब कुछ बनाता है, हां बहुत सारी चीजें, क्या तब वह भगवान क्या कहता है, क्या दिन है, झांक्यूर, सब कुछ, लेकिन क्या वह फिर दुष्ट को अपने उद्देश्य के लिए डालता है? हां सब कुछ, भगवान को सब कुछ नियंत्रण में है और उसने सब कुछ एक स्थान दिया है, क्योंकि वह उसे एक स्थान नहीं देता है तो यह कभी भी हो नहीं सकता है। वह स्थापक है, यह वह शब्द है जिसका अर्थ है भगवान, यह वह शब्द है जो यूनानी से स्थान निर्धारित करने, नीचे रखने के क्रियापद से लिया गया है। उसने चीजों को समय स्थान में रखा है, उसने इसे स्थान मिलने दिया है, क्योंकि उसने इसे स्थान दिया है, इसे स्थान मिला है। खूबसूरत है, यह स्थान मिलता है क्योंकि स्थापक ने इसे एक स्थान दिया है, और वह भगवान खुद को जवाब नहीं देता है। हम बाद में देखेंगे उसको क्यों जवाब देना पड़ेगा, वह सभी चीजों को एक स्थान देता है, लेकिन यह इसे भी मतलब है कि वह जब उसने दुष्ट को उपयोग करता है तो उसे पाप नहीं करता है, क्योंकि पाप का अर्थ है उद्देश्य को छूना। लेकिन अगर भगवान दुष्ट को दुष्ट के दिन के लिए उपयोग करता है और उसके साथ सब कुछ एक उद्देश्य है, तो उसे अपने उद्देश्य को छूने में कभी भी असफल नहीं होता है, तो वह पाप का उपयोग करता है। बस इस बारे में जानकर और इसे बाइबली अर्थ में भारतीय भाषा में भरने के लिए, और यहां भी कुछ विशेष अर्थ हैं, जैसा कि यहोवा का रूप है कि यह दुष्ट को दिन के लिए उपयोग करता है, जैसा कि मैंने कहा इसमें बहुत अधिक पाप है, ठीक है, यहां तक कि वह यह कह सकता है कि भगवान द्वारा पाप को एक स्थान दिखाने का केवल तथ्य कि उसने पाप को एक स्थान दिया है, उसने उसके साथ एक उद्देश्य है, नैतिक रूप से पाप बना रहता है, इसमें मैं एक चीज भी नहीं कह रहा हूं। और बुराई बुराई है, बुराई पीड़ादायक है, लेकिन इसका मतलब यह है कि भगवान उसके साथ एक उद्देश्य रखता है। मैं यह भी नहीं कह रहा हूं कि उस दुष्ट का उद्देश्य है, उसके साथ एक उद्देश्य है, यह एक अंतर है, यह तथ्य कि चीजों के साथ एक उद्देश्य है, यह नहीं कहता है कि यह खुद में एक उद्देश्य है, नहीं, उसके साथ एक उद्देश्य है, तभी वह भगवान के साथ है उसके सभी बनावटों में जो दृष्टिगोचर होता है। हम अब नए टेस्टामेंट की ओर बढ़ते हैं, प्रेरित 2 में जाते हैं, वहां पीटर ने कभी एक समय रखा पेंटिकॉस्ट के दिन, और फिर कहते हैं यीशु के संदर्भ में जिन्होंने हाल ही में केवल एक सप्ताह या 7-8 महीने पहले सिरके में सिरकी गई थी, वहीं उसी यरूशलम में क्रूस पर लटकाया गया था, और फिर कहते हैं इसे, और फिर वह यीशु के बारे में है, निश्चित सलाह और विज्ञान के द्वारा भगवान की हाथों द्वारा अनैतिक लोगों के हाथों में चढ़ाया गया और बारीक चढ़ाया गया। लेकिन आप समझते हैं कि मैं अब क्यों इसे उठा रहा हूं कि यीशु अनैतिक लोगों के हाथों में चढ़ाया गया था। इस मामले में ऐसे भी लोग थे जो न केवल कानून और थोरा को नहीं रखते थे, यहूदी लोगों द्वारा परित्याग किया गया। ध्यान दें कि यहां यह भी पादरियों और ग्रंथपालों द्वारा है, पिलाट्स और उन अविधि लोगों के हाथों में चढ़ाया गया था, और फिर उसे दृढ़ता से चढ़ाया गया। लेकिन वास्तव में आपने अपने अपने नेताओं के प्रेरणा के बजाय आपने उसे दृढ़ता से क्रूस पर चढ़ा दिया। यह मानवीय हिस्सा है, लेकिन यहां कहा गया है यह ईश्वर की निश्चित सलाह और विज्ञान के द्वारा था, यह योजना थी ऐसा होना था, और यह सिर्फ ईश्वर की निश्चित सलाह के अनुसार नहीं है, यह भविष्यवाणी भी है कि यह क्या होगा। और पीटर बाद में इसी ही अध्याय में इस पर और भी चर्चा करते हैं, और बाद में उसी किताब हैंडलिंग्स में, ऐसे हम अक्सर पढ़ते हैं इस तरह या पढ़ा जाता है, सिर्फ प्रारंभिक उदाहरण है, क्योंकि हम यहाँ सबसे बड़ा पाप जो कभी मानवता के इतिहास में हुआ है ये तो हमारे सामने आने वाले नए शास्त्र में भी पूर्वानुमान था। और पेटर बाद में इसी अध्याय में इस पर और भी चर्चा करते हैं। बाद में हैंडलिंग्स की पुस्तक में हमें अक्सर दिखाई देता है यह लिखा गया था या लिखा है। बस एप्सलम 22 का ही सोचें, भगवान ने जाना था और उन्होंने पूर्ववाणीकारी के माध्यम से भी इसे सूचित किया था कि यह सब कुछ कैसे होगा, कब होगा, क्या होगा, कहां होगा आदि। भगवान को पूर्व ज्ञान था। यह एक शानदार उदाहरण है, क्योंकि यदि हम मानवता के इतिहास में कभी हुए सबसे बड़े पाप की बात कर रहे हैं जो कभी हुआ है, तो हम निश्चित रूप से ईश्वर के पुत्र की क्रूस पर चढ़ाई जाने वाली है। भगवान ने अपने बेहतरीन को दिया, और मानव क्या करता है, सबसे धार्मिक परिपूर्ण मानव, उसमें यरूशलम की भी बात है, वे उसे क्रूस पर लगाते हैं, सबसे बड़ा अनैतिकता, सबसे बड़ा पाप। और यहां लिखा है कि ऐसा होना चाहिए था। भगवान ने यह नहीं सिर्फ जाना था, उन्होंने नहीं सिर्फ यह पूर्ववाणीकृत किया था, बल्कि यह होना चाहिए था, इसे निश्चित सलाह के लिए था, यह निश्चित राय के लिए था, यह निर्धारित था, स्थिर था। इस रहस्य, हाँ, इसमें हमें सुंदर उदाहरण तो हैं, लेकिन मुख्यतः मैं फिर भी यूसुफ के इतिहास को याद करना चाहता हूं, जो अपने भाइयों द्वारा इजिप्ट को बेचा गया था। लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह कैसे हुआ। उसने, जब वह अपने भाइयों को मिलता है, जब वह इजिप्ट में है, उसके भाइयों क्या करते हैं, वे चौंकते हैं। तब यूसुफ कहता है, अब मत सोचो कि तुमने मुझे यहां भेजा है, कि तुमने मुझे यहां बेच दिया है, वैसा था, लेकिन ये भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है ताकि तुम्हारे जीवन को बचाया जा सके। तो वास्तविक रूप से इस मामले का पूर्ण भूमिका हांसी है, वास्तविक कारण जिसके लिए यह हुआ है और होना चाहिए था, यह इसलिए हुआ है क्योंकि भगवान ने ऐसा किया है। वह, और मैं इसे खुशी से कहता हूं, महान निर्देशक हैं, उनके पास पटकना है, वह लेखक हैं, वह सृष्टिकर्ता हैं। तो क्या नहीं होता, एक लेखक करता है, एक लेखक एक दुनिया बनाता है, और वह किसी भी संयोजन को कुछ नहीं छोड़ता। एक स्क्रिप्ट हमेशा एक सेटअप से मिलता है और फिर आप बड़े नाटक को प्राप्त करते हैं, हां, लेकिन अंत भी एक अच्छी फिल्म या अच्छी किताब में एक खुश कथा। वह बड़े निर्देशक हैं, बड़े निर्देशक। हम अभी भी नाटक के बीच में हैं, यह सब स्क्रिप्ट में है। सभी निर्माण कायम हो जाएगा जब उस बड़े स्क्रिप्ट की परिणति सबके लिए स्पष्ट होगी, प्रत्येक के लिए स्वीकृति योग्य होगी। देखो, ये आप केवल तभी कह सकते हो जब आपके पास एक ईश्वर है जो सचमुच सभी कुछ अपने हाथ में है और इसे और डोरा पर रखता है। एक और लेखन संदर्भ, हैंडलिंग्स 17, वहां आप पढ़ सकते हैं कि पॉलस एरियोपेगस पर हैं और एथेंस में हैं। फिर उन्हें कुछ दार्शनिक विद्यालयों, एपिक्यूरस और स्टोइशियंस ने बुलाया जाता है, और फिर उन्हें अपनी कहानी सुनने का अवसर मिलता है। पॉलस से यह कहने की जरूरत थी, क्योंकि वह इसे बहुत खुशी से करते थे। फिर उनका कहना है, मैंने एक प्रतिमा देखी और मैंने एक खाली पीठ से देखा और उस पर नामकरण था अज्ञेय भगवान। उनका कहना है, वह भगवान जिसे तुम नहीं जानते, वही मैं तुम्हें प्रचारित करता हूं। और फिर उन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी के निर्माता के रूप में भगवान के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने मानवों और जनजातियों के समय और सीमाएं निर्धारित की हैं। भगवान को एक महान स्थापक के रूप में उन्होंने ग्रीक दरबार के लिए वर्णन किया, और फिर हैंडलिंग्स 17 के श्लोक 25 में उनका कहना है, उन्होंने भगवान के बारे में कहा कि उसे भी मानवों के हाथों से नहीं बनाया जाता, जैसा कि वहां खड़ी सारी प्रतिमाएं थी। भगवान को बनाने की आवश्यकता नहीं है, वह सर्जनहारा है, उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। उसने खुद सभी को जीवन प्राण दिया है, और अगर मैंने कुछ छोड़ दिया हो तो वह सब कुछ देता है। एक सर्जन, एक निर्माता है, काम अब तक पूरा नहीं हुआ है, भगवान का धन्यवाद। और तुम्हें इसे अभी नहीं निर्णय करना चाहिए, वह सभी को जीवन प्राण सब कुछ देता है, कुछ भी हमारा नहीं है, वह सर्जन है। हम अब रोमन्स एपिस्टल अध्याय 5 की ओर बढ़ रहे हैं। जेसाया पुस्तक भगवान की सार्वभौमिकता के संबंध में एक क्रोंगेटुआज है, जब बात गोद की स्थापक और निर्देशक होती है, लेकिन रोमन्स एपिस्टल भी उसके कम नहीं है। रोमियो 5:19, क्योंकि एक मनुष्य की अभिनयता के कारण ही वैसा हो गया, जैसे कि बहुतात्मकता के लिए बहुतात्मकता के कारण। और अगर आपको अभी भी स्पष्ट नहीं है तो यह आदम के बारे में है, जो कि पहले ही श्लोकों में वर्णित था, उसका नाम भी लिखा गया है। मैं फिर पढ़ता हूं, क्योंकि एक मनुष्य की अभिनयता के कारण ही वैसा हो गया, जैसे कि बहुतात्मकता के लिए बहुतात्मकता के कारण। हम वापस जीनेसिस 3 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें निषेधित फल के बारे में लिखा गया है। वह बहुतात्मकता वह हैं, वह सभी लोग जो हैं, वह सभी लोग, श्लोक 18 में, अर्थात सभी मनुष्य। इसका मतलब है कि वहां कोई अपवाद नहीं है, और बहुत आत्मकता कहना है कि यह बहुत आत्मक है। जैसे कि एक मनुष्य की अभिनयता के कारण बहुत आत्मकता के लिए बहुत आत्मकता के कारण, वे बस वहां रखे गए थे, स्थापित हो गए थे, और यह भी एक पैसिव क्रियावली रूप है। यह कैसे है कि आप और मैं, हम सभी और उन सभी अरबों के लोग उदाहरण है, क्योंकि यही वह शब्द है जिसे पापी कहा जाता है, और हम सभी मृत्युशील भी हैं। क्या यह एक अपनी चयनित चीज है? नहीं, यह वास्तव में तभी था जब आप अभी भी पालकी में थे। हां, यह एक तथ्य है। हमसे यह नहीं पूछा गया था, हमसे यह नहीं पूछा गया था कि क्या हम पैदा होना चाहते थे, जो वास्तव में एक कृत्रिम विचार है। हमारे पास क्या है? उत्तर है बिल्कुल भी कुछ नहीं, और हम विचार करते हैं कि हम इसे हाथ में लेने के लिए हैं। वास्तव में हमारे पास उस भाग का भी कुछ नहीं है जिसे हम लगते हैं कि हमारे पास है, लेकिन हमें पापी बनाया गया था। तो अगर मैं आपसे अब पूछूं, ऐसा कैसे है कि आप और मैं पापी हैं? उत्तर, हमें इस रूप में रखा गया है। आप कहते हैं हां, लेकिन यह मुझे न्यायसंगत नहीं लगता। तो उत्तर है, तो क्या आपसे आपके राय की जा रही है? हमें इस रूप में रखा गया है, यह एक दिया गया है। इस पर दुहक होने से पहले एक बार इस वाक्य को पढ़ें, इसे ईश्वर की स्तुति कहो कि यह उसका काम है, यह उसका नियंत्रण है। तुलना जो मैंने पढ़ी थी वास्तविक रूप से पूरी नहीं हुई है, जैसे कि एक मनुष्य की अभिनयता के कारण, वह था आदम, बहुतात्मकता के लिए बहुतात्मकता के कारण रखे जाएंगे, तो वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञाकारी के कारण बहुतात्मकता के लिए बहुतात्मकता के कारण रखे जाएंगे। पहला मनुष्य आदम था, दूसरा मनुष्य यीशु क्रिस्त था, आखिरी आदम, आदम का उत्तराधिकारी। यह रोमियो 5:19 में लिखा है। भगवान ने इस सब कुछ को ऐसे कार्यशील बनाया है। आदम के सभी अनुसार पापी और मृत्युशील हैं। चाहे तुम बड़े हो या छोटे पापी हो, भगवान के लिए यह कोई अंतर नहीं पड़ता। तुम एक पापी हो और तुम्हें कुछ कमी है। हम ईश्वर की महिमा से वंचित हैं, हम कमी में हैं, हम सभी असफल हैं, बहुत आत्मक रूप से पापी कहलाए गए। ऐसा होने के बारे में जानकर भी हमारे पास कोई प्रश्न नहीं है। यह भगवान का योजना है। भगवान का योजना है कि वह पूरे मानव जाति को पापी बनाए रखता है। वह इसे उसी तरह से करता है जैसे कि वह भी सभी मानव जाति को धार्मिक बनाए जा रहा है। यह एक तथ्य है। और इस तरह से देखो, इस ईसा का संदेश, यह बस एक सूचना है, यह एक समाचार है, यह एक प्रस्तावना नहीं है। यह तथ्य है, यह सूचना है, और इसे गूंथने दो। कुछ लोग इसे मान लेते हैं, अधिकांश इस सूचना को नहीं जानते। क्या आप सचमुच ये सोचते हैं कि वहां जो कुछ आदम ने किया है उसका प्रभाव, कि वह बड़ा है, प्रभाव अनवरत है, और जीसस क्राइस्ट का प्रभाव कम है, वह बड़ा होगा? सारांश, आदम के प्रभाव का प्रभाव जी हाँ वर्ड है, और जीसस क्राइस्ट आदम का अंतिम रूप है। ये तो बिजार है, क्या नहीं? ठीक है, तो हम रोमियो 8:20 में जा रहे हैं। आप समझते हैं हम अब भी यही सवाल कर रहे हैं, पाप भगवान की योजना में था क्या? मैं पढ़ूंगा, क्योंकि निर्माण ने अव्यर्थता को अधीन किया। यह सही है, यह बस एक निर्धारण है। पूरा निर्माण अव्यर्थता के अधीन है। हम अपवाद की दासता के अधीन है। हम सभी अपवाद के अधीन हैं। वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, और यह एक नियम है, हम उसके अधीन हैं, इसलिए दासता, हम उसमें बंधे हुए हैं। तुम इससे बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन यह बेकार है। यह वास्तविक में एक दिया गया है, यह विनाशक की दासता है। निर्माण को अव्यर्थता के अधीन किया गया है, और अब तुम यह सोच सकते हो कि बस हो सकता है, लेकिन यह संभावना है कि यह सृष्टि ने खुद का चयन किया हो। नहीं, कहता है पॉल, यह स्वैच्छिक नहीं था। इसने सृष्टि या निर्माण का चयन नहीं किया था कि यह अधीन किया जाए। सृष्टि को सृष्टि द्वारा अधीन किया गया है। द्वारा कौन? यदि सृष्टि इसके अधीन है तो इसे ऐसे निर्देशित करने और इसे ऐसे निर्धारित करने वाला केवल एक हो सकता है, और यह इसे इस रूप में निर्देशित किया है और यह इस तरीके से निर्धारित किया गया है, क्योंकि सृष्टि अव्यर्थता के अधीन हो गई, स्वैच्छिक नहीं। लेकिन उसके लिए स्वैच्छिक नहीं, लेकिन उसके लिए, बेशक उसके लिए जिसने उसको उसके अधीन किया है। सृष्टि गर्भवती है, सृष्टि पीड़ित है, जिसमें सृष्टि खुद को मुक्त करेगी। मैं आगे पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरा ध्यान इस बिंदु पर है, स्वैच्छिक नहीं, अर्थात यह उसको उसके अधीन करने वाले ने किया है, यानी सृष्टिकर्ता ने। फिर हम फिर से भगवान की ओर देख रहे हैं। भगवान उसके लिए दोषी नहीं है, उसके लिए उसे प्रशंसा मिलती है। वह पाप के लेखक है, उसका हम उसे दोषी नहीं ठहराते हैं। आप उसे उस महान पुस्तक के लिए प्रशंसा देते हैं जिस पर वह लिख रहा है। उस पुस्तक में उसने पाप और बुराई को भी अपने उद्देश्य के लिए सहारा लेने के लिए सब कुछ डाला है। इतिहास और भविष्य है उसकी कहानी, रोमियो 9। वहां पॉलस फिर उस फिरो के बारे में लिखता है जिसे भगवान ने कठोर बना दिया था, और फिर वहां यह स्थित है। यह पॉलस का अपना नतीजा है। तो फिर वह उस पर दया करता है जिस पर उसका इरादा है, और वह बनाता है जिसे उसका इरादा है। और जब फिरो ने भगवान की इच्छा के खिलाफ किया, क्योंकि भगवान की इच्छा थी मेरे लोगों को जाने दो, लेकिन भगवान ने मोशेस से पहले ही कह दिया था, बहुत से फिरो सुनेंगे नहीं, और अगर वह सुनता है तो मैं उसके हृदय को कठोर कर दूंगा। मोशेस ने बस वही किया जो भगवान ने कहा था, और फिरो को भी यह सुनाया गया था कि उसे क्या करना चाहिए। बार बार मेरे लोगों को जाने दो, किसी क्षण में तो फिरो वह सभी प्रलयों के तहत दबने का खतरा है। और फिर क्या, जब फिरो उन दिनों के बड़े और शक्तिशाली आदमी उन सभी आपदाओं के तहत दबने का खतरा है जो फिरो के साथ हो रहे हैं, तो तुम पढ़ते हो और भगवान ने उसका हृदय मजबूत किया और उसको उसके हृदय के अनुसार बना दिया। यह एक ग्रीक रूपांतर है। उसने तो भगवान उसका हृदय इस प्रकार बनाया कि वह फिर भगवान के खिलाफ ना बोलने का कारण बना सकता था। सारांश यह ऐसा होना था, क्योंकि पॉलस फिर समझाता है, भगवान को अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक प्रतिस्थानी चाहिए था। उसने अपनी शक्ति प्रदर्शित करना चाहा। हां, इसके लिए तुम्हें एक विरोधी की आवश्यकता है ना। इसमें कौन सी तुम्हारी मजबूती दिखाने के लिए तुम्हें एक मजबूत विरोधी की आवश्यकता है? एक कमजोर विरोधी के सामने तुम अपनी शक्ति नहीं दिखा सकते। भगवान हमेशा विरोध द्वारा काम करता है, और वह शक्ति का प्रदर्शन करने में भी ऐसा ही है। लेकिन हम आगे पढ़ते हैं, लेकिन तुम उसे पहले ही आ रहा होता है। तब एक विचार उठता है, लेकिन तुम मुझसे अब कहोगे कि वह क्या आरोप लगा रहा है, क्योंकि इन्हें उसकी इच्छा का विरोध किया है। वह सवाल समझता हूं, अगर फिरो आखिरकार बस गुप्त रूप से ही वैसा करता जैसा कि भगवान ने इच्छित किया था, तो भगवान फिरो को क्या आरोप लगा सकते थे? फिरो ने भगवान की इच्छा के अनुसार नहीं किया। हां, लेकिन भगवान की इच्छा थी कि फिरो ना कहे, इसलिए उसने उसका हृदय भी कठोर किया। तो सवाल इतना स्वाभाविक है, उसे फिर क्या आरोप लगा सकते हैं? 9, फिर उसकी इच्छा को कौन विरोध कर सकता है? उत्तर है, कोई नहीं। फिरो ने भगवान की इच्छा नहीं सुनी, लेकिन उसने भगवान की इच्छा उसकी सोच को किया। कोई भी भगवान की इच्छा को विरोध नहीं कर सकता है। एफिसियों 1:11 की ओर देखो, वहां एक ही वाक्य में दोनों शब्दों का स्थान है। वहां लिखा है, जो अपनी इच्छा के अनुसार सब में काम करने वाला परमेश्वर। अब तक एक भी सृष्टि नहीं थी जिसने भगवान की इच्छा का विरोध किया था, कभी नहीं। किसने भगवान की इच्छा का विरोध किया? हां, बहुत से, यदि नहीं तो सभी। हां, लेकिन किसी ने कभी भगवान की इच्छा का विरोध नहीं किया। हां, तो फिर लिखा है, लेकिन तुम कौन हो कि तुम भगवान का विरोध कर रहे हो? भगवान जिसने खुद फिरो को बनाया, उस विरोध के माध्यम से भी वह उसे एक संकट में लाता है। आदि क्या बनाया गया उससे कहेगा कि मुझे ऐसा क्यों बनाया? बनाया गया कि निर्माता ने इज्जत के वास्ते पात्र बनाए हैं, और वह अयोग्यता के लिए भी पात्र बनाता है। और आखिरकार उसने सभी पात्रों को अपनी इज्जत के लिए बना दिया, लेकिन प्रक्रिया में उसने ऐसे पात्रों को भी बनाया है जिनमें इज्जत नहीं है, जो अच्छा नहीं है। लेकिन तुम तो ऐसा करते हो ना, कुछ वस्त्र तुम उन्हें दीवार पर टांगते हो और दूसरी वस्त्रों को बिस्तर के नीचे रखते हो। सब कुछ का एक निश्चित उद्देश्य है और वहां कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, और यह भगवान के साथ भी ऐसा है। रोमियो 11:32 यह आखिरी शतपति है, लेकिन वास्तव में सबसे बहुपरक। मुझे आशा है कि अब तक तुम यह तय कर चुके होंगे कि भगवान वास्तव में निर्देशक हैं, जो सब कुछ अपनी योजना के अनुसार उपयोग करते हैं, और लगातार उसके बिना कोई आश्चर्य नहीं है, और पूरे विश्व का इतिहास उनके हाथों में है। ठीक है, रोमियो 11:22। पॉलुस ने हाल ही में कुछ अध्यायों में मसीह के यहूदी अस्वीकार और इसराइल के पतन के बारे में बात की है, उनके बारे में कि वे संदेश के दुश्मन हैं। हाँ, कहता है पॉलुस, लेकिन भगवान ने ऐसा ही किया है। उन्हें उसने एक आत्मा दी है ताकि वे न देखें और न सुने। उसने उन पर एक गहरी नींद की आत्मा डाल दी है। ये भगवान करता है, और वहां यह लिखा है क्योंकि उनके पतन के कारण उद्धारण जाता है। मसीह की अस्वीकृति स्वयं में अच्छाई नहीं हो सकती, लेकिन यह उसी भगवान की इच्छा है जो उसमें एक उद्देश्य रखता है। पॉलुस कहते हैं, इसराइल पर एक आंशिक कठोरता आई है, लेकिन वह एक समाप्त हो जाएगी, क्योंकि भगवान समय और अपने तरीके में सब कुछ सही करेगा। वही भगवान है, भगवान कोई गलती नहीं करता। रोमियो 11 में पॉलुस कहता है, क्योंकि उन सब ने पाप किया और उन्हें प्रभु की महिमा की आवश्यकता है। सबको अन्याय में बंद किया गया है। यहां एक शब्द का उपयोग किया गया है जो लूका 15 में जाल में मछलियों के संबंध में उपयोग किया जाता है। वे मछलियां बंद की गई हैं, वे कहीं नहीं जा सकती। भगवान ने सबको अन्याय में बंद किया है। किसने किया? भगवान ने। क्यों किया? सभी पर दया करने के लिए। और यह अर्थ है कि उस अविचलनीय निर्माणों के सभी वे बंद किए जाते हैं, सभी, कोई बाहर नहीं। वह सभी पर दया करता है। वह एक ही उद्देश्य, एक ही अंतिम परिणाम के रूप में एक घर की तरह है, यह एक चट्टान है। तो पॉलुस, जैसे कि यहां आपके दिल को छू जाता है, तो आपको बस एक ही चीज करनी पड़ती है। वाह, क्या एक शानदार भगवान! ओ ईश्वर की दौलत, बुद्धि और ज्ञान की गहराई! इतनी महान, इतनी विशाल, इतनी सर्वव्यापी, इतनी विश्व सामान्य, कितनी बुद्धिमत्ता! वह सब कुछ कैसे उपयोग में लाता है, और वह जान बिना कुछ नहीं होता। यह ईश्वर की दौलत, बुद्धि और ज्ञान की महान गहराई है। उसके निर्णय कितने अज्ञात हैं! वह चीजों को संकट में ले आता है। वह अज्ञात है, उसके मार्ग अगाध हैं। यह हमारे बुद्धि से बहुत ऊपर जाता है, लेकिन यह उसके मार्ग और उसके निर्णय हैं। किसने प्रभु की सोच को जाना? किसने उसे सलाह दी, या किसने पहले उसे कुछ दिया और उसके लिए उसे चुकाना होगा? जैसे कि अगर भगवान किसी को जवाब देने के योग्य हैं, आप समझते हैं, ये बहुवाचनिक प्रश्न है। भगवान हमें किसी से जवाब दे नहीं है, नहीं। वह सर्वशक्तिमान है, और उन्हें कुछ चुकाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह उनके पास सब है। यह इस रोमियो 11 के अंतिम श्लोक में कहा गया है, क्योंकि उनसे, उनके द्वारा और उनमें सभी चीजें हैं। सब कुछ उनसे है, उसके द्वारा, आज तक उसमें है, भविष्य में। पूरे ब्रह्मांड का उत्पत्ति सब उससे होता है, और यह उसके द्वारा निर्देशित भी होता है, और यह उसके अज्ञात मार्ग हैं जो गहराई और ऊंचाई में जाते हैं। यह उससे है, यह उसके द्वारा है, और यह फिर से उसमें ले जाता है। भगवान के पास कुछ भी गड़बड़ नहीं होता है। आमीन। तुमने सुनने के लिए धन्यवाद। ये नीदरलैंड फाउंडेशन गुड बराइट का एक अध्ययन था, जिसमें अपोस्टल पॉलस की उपदेशों पर जोर दिया गया था और ग्रीक मौलिक टेक्स्ट का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया गया था, एक सामान्य बाइबल अनुवाद की बजाय। क्या आप पॉलस के इंजील के बारे में और जानना चाहेंगे? यह www.godbericht.nl.lalu के माध्यम से किया जा सकता है। क्रोम या फायरफॉक्स ब्राउजर के माध्यम से एक भाषा ऐड ऑन के साथ नीदरलैंड्स वेबसाइट को स्वच्छ रूप से आपकी पसंद की भाषा में अनुवादित किया जा सकता है। यह बाइबल अध्ययन पहले नीदरलैंडी भाषा में प्रस्तुत किया गया था, और एआई के माध्यम से तुम्हारी भाषा में अनुवादित किया गया है।